नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। इस साल के अंत में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होगा, लेकिन उससे पहले अमित शाह ने महाराष्ट्र जाकर उद्धव ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब का प्रमुख और शरद पवार को नंबर एक करप्ट नेता बताकर बदले में उनसे अहमद शाह अब्दाली और फिर से तड़ीपार का तमगा ले लिया। वैसे भी अहमद शाह अब्दाली इस देश में लूट और आतंक का प्रतीक है, और उद्धव ठाकरे ने अमित शाह को अहमद शाह अब्दाली का वंशज बताकर मराठाओं को जो संदेश देना था वो तो दे ही दिया। साथ ही पहले से चली आ रही महाराष्ट्र बनाम गुजराती की अदावत को और हवा देने की कोशिश की। दरअसल बीते कई सालों से अमित शाह की इमेज अपने साहेब यानी नरेंद्र मोदी के लिए हर गलत सही कामों को अंजाम देने से ज़्यादा कुछ नहीं है, और अगर कोई अमित शाह को नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी समझने की भूल कर रहा हो तो वो अपनी भूल सुधार ले, क्योंकि अमित शाह अब भी नरेंद्र मोदी के सेवादार, पुजारी या कोतवाल से ज़्यादा कुछ और नहीं है, और उन्होंने जाने अनजाने खुद को खुद से खलनायक बना लिया है, और इसके लिए दोषी भी सिर्फ और सिर्फ अमित शाह ही हैं। इसलिए कॉलम अपन तो कहेंगे में आज का मेरा शीर्षक है, तो अमित शाह अब अहमद शाह अब्दाली। अमित शाह की छाती 56 इंची हो गई होगी। आखिर उद्धव ठाकरे ने उन्हें अहमद शाह अब्दाली जो बताया। सोचे, फाफड़ा ढोकला खाने वाले एक जैन गुजराती को उद्धव ने अहमद शाह अब्दाली जैसा बताया। अहमद शाह अब्दाली का मतलब है वह हमलावर लुटेरा जिसने जनवरी 1757 की पानीपत की लड़ाई में न केवल मराठाओं को हराया था बल्कि दिल्ली पर कब्जा करके हिंदुओं को ऐसा लूटा जो पंजाबियों अफगानों में यह कहावत बनी कि खादा पित्ता लाहेदा रहदा अहमद शाहेदा, मतलब जो खा लिया पी लिया और तन को लग गया वही अपना है, बाकी तो अहमद शाह लूट कर ले जाएगा। तो क्या माना जाए कि उद्धव ठाकरे शरद पवार की यार पार की लड़ाई में आगे लूट का भी कोई भांडाफोड़ है? ध्यान रहे, इन दिनों मुंबई में जानकारों के बीच अमित शाह और उनके बेटे जय शाह को लेकर अकल्पनीय चर्चाएं हैं। इस सब के लिए स्वयं अमित शाह दोषी हैं, क्योंकि उन्होंने ही पहले महाराष्ट्र जाकर कहा था कि उद्धव ठाकरे औरंगजेब फैन क्लब का प्रमुख है और शरद पवार देश का सबसे बड़ा नंबर एक करप्ट नेता। मराठा नेताओं को करंट लगना स्वाभाविक था। बदले में जहां शरद पवार ने अमित शाह को तड़ीपार गृहमंत्री बताया, वहीं उद्धव ठाकरे ने मराठाओं को आतताई और लुटेरे अहमद शाह अब्दाली के इतिहास की याद कराई। यूं भी प्रदेश में मराठी बनाम गुजराती का हल्ला पहले से बना हुआ है। पुणे में शनिवार को उद्धव ने या तो आप रहेंगे या मैं रहूंगा के अपने बयान का भी खुलासा किया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्होंने यह बात किसी व्यक्ति के संदर्भ में नहीं कही थी, हालांकि कुछ लोगों को लगा कि मैंने किसी को चुनौती दी, लेकिन मैं खटमलों को चुनौती नहीं देता। यहां मैं का मतलब मेरा सभ्य महाराष्ट्र है और आपका मतलब महाराष्ट्र को लूटने वाली पार्टी है। उन्होंने कहा कि खटमलों को चुनौती नहीं दी जानी चाहिए बल्कि कुचल दिया जाना चाहिए। सवाल है, क्या मराठा उद्धव में अब्दाली और उसकी सेना को कुचलने की ताकत है? जब उन्होंने अमित शाह को अहमद शाह अब्दाली का वंशज करार दिया है तो बेचारे हिंदू मराठा कैसे दिल्ली की उस सत्ताशाही को हरा सकते हैं जिसकी छाती 56 इंची है, जिसका आधुनिक भारत में पठानी कदकाठी की दबंगी जैसा खौफ है। वैसे भी खैबर पार कांधार के अफगानी पठानों को लेकर कलयुगी हिंदुओं में पुराना खौफ है, इनकी कदकाठी का आज भी क्रेज है। हाल में देखा नहीं कि शाहरुख खान की पठान फिल्म कितनी सुपरहिट थी? इसलिए यदि अमित शाह को अहमद शाह अब्दाली की पठानी ताकत चुनावी क्रूरताओं का अनुमान लगाएं, तो महाराष्ट्र के महासमर में भला मराठा मानुष के क्या अवसर? अब्दाली की तरफ से उनके दरबारी एकनाथ शिंदे, अजीत पवार ही ठाकरे को निपटा देंगे। इसलिए चुनाव और राजनीति से ज्यादा अमित शाह पर विचार जरूरी है। अपना मानना है कि अमित शाह की छाती चौड़ी हुई होगी, मानो जन्म हुआ धन्य जो वे भारत के गृहमंत्री के रूप में अहमद शाह अब्दाली जैसा क्रूर और खौफ पैदा करने वाले इतिहास पुरुष करार दिए जा रहे हैं। सोचें, ऐसी उपमा क्या पहले कभी भारत के किसी गृहमंत्री को मिली? अपने नजरिए से सोचे तो सवाल है, अमित शाह के लिए यह गौरव की बात या कलंक की? मुझे पता नहीं इन दिनों अमित शाह सोचते हैं या नहीं। मैं पहले अमित शाह को जानता था, मेरा जानना सत्ता पूर्व के अमित शाह का था। मुझे तब अमित शाह लॉजिकल लगते थे, बुद्धि दिमाग में विवेक था, सहृदयता सहजता थी, लगता था दिमाग में कोई हिंदू दृष्टि है। गांधी की जगह यदि कमरे में सावरकर की तस्वीर लगाई है तो सावरकर के आधुनिक राष्ट्र राज्य के विजन को लेकर संभवतया उन्होंने पढ़ा और समझा हो। इस सच्चाई को बताने में भी मुझे हिचक नहीं है कि मैंने धारा 370 को हटाने की उनकी होशियारी, चतुराई तथा साहस की तारीफ की थी। हाँ, मेरे इस आकलन को नोट रखें कि धारा 370 को हटाने का निर्णय तैयारी अमित शाह का निज साहस, चतुराई व स्वयं के पुरुषार्थ से था। नरेंद्र मोदी का रोल इतना ही था कि वे गृह मंत्री के प्रधानमंत्री थे। 5 अगस्त 2019 के उस क्षण में मेरा अनुमान था कि अमित शाह अब नरेंद्र मोदी के साए, उनकी छाया से बाहर निकलकर अपना व्यक्तिक नायकत्व बनाएंगे। पर भला परछाई कभी मूल से अलग अस्तित्व पा सकती है? अमित शाह ने अपने राष्ट्रवाद को भी नरेंद्र मोदी के चरणों में रखा और अपनी स्वतंत्र सियासी हैसियत बनाने की बजाय वे नरेंद्र मोदी के प्रमुख मैकेनिक, उनके सेवादार, उनके पुजारी की उन्हीं भूमिकाओं में रमे रहे जो गुजरात में गृह राज्य मंत्री से लेकर उनके अध्यक्ष, उनके चाणक्य और उनके व्यवस्थापक कोतवाल आदि की भूमिकाओं में चली हुई थी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के रिश्तों को लेकर तमाम तरह के कयास लगते हैं, लेकिन बेसिक सत्य इतना भर है कि दोनों एक दूसरे के हमराज हैं, एक दूसरे की मजबूरी हैं। मगर साथ में यह सच्चाई भी है कि अमित शाह का अस्तित्व मोदी के साय, उनकी छाया, उनकी परछाई का है। अमित शाह स्वयंभू नेता, स्वयं चंद्रगुप्त मौर्य, स्वयं में भगवान, फरिश्ता न थे, न हैं और न होंगे। अमित शाह की यह खामोख्याली है कि वे साहेब का काम करते करते एक दिन स्वयं साहेब हो जाएंगे, उनकी गद्दी वे पाएंगे, वे भी दिल्ली के राजाधिराज बनेंगे। दिल्ली सल्तनत के अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह रंगीला या औरंगजेब या लॉर्ड कर्जन या नरेंद्र मोदी बनेंगे। जबकि अमित शाह के व्यक्तित्व कृतित्व में अब ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व परिभाषित हो। मैं कई बार सचमुच सोचता हूं कि अमित शाह को भाग्य ने राजनैतिक पुण्यता के कितने अवसर दिए, लेकिन उन्होंने नरेंद्र मोदी की सत्ता के एक मैकेनिक के तौर पर सत्ता घर में अपने हाथ काले कर अपने को जाने अनजाने खलनायक के अलावा बनाया क्या? तभी देश में उनके कामों, उनके रोल और भूख को लेकर अब कैसी कैसी चर्चाएं हैं। कभी उन्हें आरएसएस पसंद करता था, वे हिंदूवादियों में एक निष्ठावान हिंदू माने जाते थे, लेकिन 10 साल के अनुभव में आज का लब्बोलुआब क्या है? वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अधिक बदनाम है। कोई ना माने इस बात को, लेकिन यदि कोई गोपनीय जनमत संग्रह हो तो मोदी के ही कैबिनेट के मंत्री, आला अफसर, भाजपा पदाधिकारियों, आरएसएस और संघ परिवार के तमाम चेहरों में वे नंबर एक अहंकारी खलनायक करार दिए जाएंगे। वहीं पूरा देश, देश की हर राजधानी का हर तरह का प्रभुवर्ग सर्वमान्यता से यह फैसला देता हुआ होगा कि इस हिंदू शाही को बर्बाद करने में नंबर एक जिम्मेवार खलनायक यदि कोई है तो वह अमित शाह है। मगर अमित शाह को एहसास नहीं है कि वे भाजपा संसदीय दल से लेकर नागपुर में भागवत एंड पार्टी से लेकर योगी आदित्यनाथ या मोदी द्वारा बनाए गए मुख्यमंत्रियों, पदाधिकारियों में अलोकप्रिय और नापसंद हैं। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता वे महानगर हैं जहां तमाम जानकार सारा ठीकरा अमित शाह पर फोड़ते हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी ने बहुत होशियारी से अमित शाह का उपयोग किया है। उन्हें सत्ता की काली कोठरी में वे तमाम काम दिए जिनसे उनके हाथ न रंगे जाए और अमित शाह पर सब रंगता जाए। चंदा इकट्ठा करने का ठीकरा फूटे, ईडी सीबीआई के छापों, नेताओं की गिरफ्तारियों के काम उनके जिम्मे, तो आरएसएस और भाजपा के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को भी अमित शाह की भावभंगिमा से औकात मालूम होती हुई हो। अमित शाह उनके लिए बफर और बाकी के लिए एक अहंकारी बाधा। ऐसा होना दिल्ली की सत्ता प्रकृति की वजह से है। दिल्ली का हर बादशाह, हर प्रधानमंत्री अपने कोतवाल से राज करता आया है। हम कलयुगी हिंदुओं की नियति है जो उन्हें हर काल में पृथ्वीराज चौहान से लेकर अकबर, औरंगजेब, नादिर शाह, अब्दाली, अंग्रेज, नेहरू से मोदी सभी के शासन में बादशाह और कोतवाल, प्रधानमंत्री और सीबीआई, ईडी तथा कारिंदों की दबंगी में सांस लेनी ही है। इसीलिए 2014 में नरेंद्र मोदी की हिंदूशाही जब बनी और उनका हिंदू प्रजा का भगवान, जादूगर, फरिश्ते होने का प्रोपेगेंडा शुरू हुआ तो स्वाभाविक था जो उन्होंने अमित शाह को अपना प्रमुख पुजारी बनाया। वे सारे गंदे काम अमित शाह से करवाए जो भारत की सत्ता की प्रकृति में है। दिल्ली में और दिल्ली से देश में अमित शाह का पावर केंद्र आतंक व खौफ का पर्याय बना। वे अपने साहिब के प्रमुखतम मैकेनिक, कोतवाल, चाणक्य, हनुमान आदि सब कहलाए और जितने गंदे हिंसा प्रतिहिंसा वाले काम होने थे वे सब उनके जरिए होते गए। ये इनके इन प्रकारेण चुनाव जीतने के बंदोबस्तों से लेकर विरोधियों को डराने, पार्टियों को तोड़ने, दल बदल, ईडी सीबीआई की छापेमारी, नेताओं को जेल में डालने, कारिंदों की नियुक्तियों से लेकर मीडिया, उद्योगपतियों सबको लाइन हाजिर करने के मोदी राज के सभी बुरे काम अमित शाह के जरिए थे और हैं। यह दिल्ली की सत्ता का चरित्र और हिंदुओं के दुर्भाग्य की नियति है। जो राजा कोई बने वह अपने साथ आतंक और लूट का कोतवाल जरूर लिए होगा। मुगल और खैबर पार के आक्रामक तलवार लिए होते थे, लेकिन वे भी इस व्यवस्था के कायल थे। अंग्रेजों ने दिमाग और चतुराई से शासन बनाया और लूटा, मगर कोतवाल और डराने की व्यवस्था को बढ़ाया। नेहरू गांधी परिवार ने स्वतंत्रता आंदोलन की पुण्यता तथा वैचारिक विकल्पहीनता में ठसके से राज किया, पर कोतवाल व्यवस्था की निरंतरता के साथ। लोगों को याद नहीं होगा, लेकिन सत्य है कि इंदिरा गांधी के साथ एक मंत्री ओम मेहता होते थे, जिन्होंने डंडे के बल पर आपातकाल का देश में आतंक बनवाया था। हम लोग इतिहास याद नहीं रखते हैं, लेकिन सच्चाई है कि दिल्ली के हर बादशाह कथित फरिश्ते ने एक चीफ मैकेनिक और कोतवाल से गंदे काम हमेशा करवाए। इसलिए 2014 में कांग्रेस और सेकुलर आइडिया ऑफ इंडिया के बाद नरेंद्र मोदी की कमान में हिंदू आइडिया ऑफ इंडिया की हिंदुशाही बनी, तो मैकेनिक की भूमिका में अमित शाह का अभ्युदय होना ही था। मुझे याद है चाणक्य की कथित पहली भूमिका में नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता की एक बैठक में उन्होंने मंत्रियों को यह ज्ञान दिया था कि विपक्ष और कांग्रेस खत्म नहीं हुए तो हमारा राज लंबा नहीं चलेगा, इसलिए विपक्ष को मारो, कमर तोड़ो, उसे पप्पू करार दो और हमेशा के लिए खत्म करो। नतीजा सामने है। पूरा देश अब इस प्रतिक्रिया को लगातार सुनता हुआ है कि भारत का गृह मंत्री कभी तड़ीपार था। मुझे समझ नहीं आया कि जो नरेंद्र मोदी के बाद प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में है, वे अमित शाह इस तरह की जुबानी हिंसा क्यों कर रहे हैं कि शरद पवार देश का भ्रष्टतम नेता और उद्धव ठाकरे औरंगजेब फैन क्लब का प्रमुख, या योगी आदित्यनाथ को हटाने की ठानना, जबकि नरेंद्र मोदी मौन और पीछे हैं। तब अमित शाह आगे होकर तलवारबाजी क्यों कर रहे हैं? क्या उन्हें कोई फीडबैक है कि ऐसा करने से उनका ग्राफ बढ़ेगा, या वे मोदी की चिंताओं में उन्हें भरोसा दिलाते हुए अपने को झोंक देकर उनका उत्तराधिकार पाएंगे, या इससे भक्त हिंदुओं में उन्हें अपनी भक्ति की आस है? मैं अमित शाह का मनोविज्ञान नहीं समझ पा रहा हूं। इतना भर दिख रहा है कि अमित शाह अपनी ख्याति जहां नंबर एक खलनायक की बना बैठे हैं, वही नरेंद्र मोदी के साथ जितने जुमले जुड़े हैं उससे अधिक उनके साये के अमित शाह के कृतित्व में बदनामी के जुमले नत्थी होते हुए हैं, क्या नहीं? पॉडकास्ट का ये एपिसोड अब यहीं समाप्त होता है। अगले एपिसोड का करें इंतजार। बहुत बहुत धन्यवाद।